एक पल के लिए आस्था के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरमान की हरकत देखकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे समझ चुके थे कि अरमान इस तरह अपना गुस्सा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वंशिका ने भले ही हमले की बात कबूल कर ली थी, लेकिन अरमान को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिरकार उसने वंशिका का क्या बिगाड़ा था। और तभी अरमान अपना अगला सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आस्था तुरंत बीच में आकर खड़ी हो गई। वो समझ चुकी थी कि अरमान को इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है, इसलिए उस वक्त वंशिका की जान बचाना ज़रूरी था। आस्था तुरंत बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब आप वंशिका से कोई सवाल नहीं करेंगे। वंशिका, तुम अपने कमरे में जाओ। ये बोलकर आस्था ने वंशिका को उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी, जो काफ़ी बीमार भी लग रहे थे, आस्था के सामने आकर खड़े हो गए। वे जान चुके थे कि अरमान इस वक्त किसी दर्द से गुजर रहा है। अपनी पत्नी के मुंह से नफ़रत के शब्द सुनकर उसकी क्या हालत हो रही होगी, दादाजी ये बात अच्छी तरह समझ रहे थे। अचानक वे आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, जब से तुम्हें इस बात का पता चला है कि अरमान सिंघानिया ही डेविल किंग है, तो शायद तुम ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें उसका पूरा सच पता चलेगा और ये पता चलेगा कि मेरा मासूम सा बच्चा क्यों डेविल किंग बना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे ज़रूर माफ़ कर दोगी और एक बार फिर प्यार से उसकी ज़िंदगी में लौट आओगी। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था के माथे पर बल पड़ गए। वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, वाह दादाजी, मैंने नहीं सोचा था कि आप इस तरह से अपने खूनी पोते का समर्थन करेंगे। आखिरकार आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं खूनी से एक बार फिर प्यार करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ तुमसे 10 दिन मांगता हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने अरमान को माफ़ नहीं किया और तुम्हारी नफ़रत इसी तरह अरमान के लिए कायम रही, तो तुम बेझिझक इस घर को छोड़कर जा सकती हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रौनक तुम्हारे पीछे नहीं आएगा और ना ही कोई तुम्हें कभी परेशान करेगा, लेकिन 10 दिनों तक तुम्हें यहीं रहना होगा। जैसे ही दादाजी ने आस्था के सामने ये शर्त रखी, आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। आस्था ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अरमान सिंघानिया से बचकर वे शहर तो क्या, इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए तो भी वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि अरमान सिंघानिया उसे कहीं से भी खोज निकालेगा। इसलिए आस्था ने गहरी लंबी सांस ली और सोचने लगी कि 10 दिन की ही तो बात है, 10 दिन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी और सीधा राजवीर का मर्डर कर देगी। आस्था के सर पर तो बस राजवीर को मारने का भूत सवार था। वेल, अब जल्दी ही आस्था दादाजी की ओर देखकर बोली, मुझे मंजूर है। उसके बाद वो अरमान के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और बिना किसी भाव के बोली, सिर्फ 10 दिन और 10 दिनों के बाद मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। ये बोलकर आस्था बिना रुके सीधा वंशिका के कमरे में चली गई। आस्था को जाते देखकर अरमान, जो कब से खड़ा होकर अपने आप को नियंत्रित कर रहा था, अचानक उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर साइड टेबल पर जोर से मार दिया, जिससे टेबल चकनाचूर हो गई। सब लोग हैरान हो चुके थे। रश्मि को भी समझ में आ चुका था कि आस्था इस वक्त अरमान से क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसे अरमान के डेविल किंग होने का सच पता चल गया था। राधिका भी डेविल किंग का सच नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे भी अरमान से एक अलग तरह का डर सा लगने लगा था। आकाश, सुमित, टाइगर जल्दी से अरमान के पास आ गए थे और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। तभी अरमान ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया था, क्योंकि इस वक्त अरमान इस दर्द को खुद झेलना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि उसके डेविल किंग होने की खबर उसकी मोहब्बत को उससे इस तरह दूर कर देगी। लेकिन तभी दादाजी अरमान के पास आते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि मेरा पोता जो चाहे वो कर सकता है। एक बार फिर तुझे अपनी पत्नी का दिल जीतना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तू एक बार फिर अपनी पत्नी का दिल जीत लेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी और कभी भी तुझसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचेगी। एक पल दादाजी की बात सुनकर अरमान को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वे सबकी ओर एक नज़र देखते हुए वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका उस वक्त काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि डेविल किंग के बारे में उसने भी कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी थी, और अब क्योंकि वो डेविल किंग के साथ उस घर में रह रही थी, तो उसे भी अजीब सा खौफ आने लगा था। इसी घबराहट में वो अपने कमरे में जा पहुंची थी और फटाफट से अपने कपड़े पैक करने लगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसके पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि सुमित खड़ा हुआ था। अब सुमित को देखकर एक पल के लिए राधिका के कपड़े हाथ से गिर गए। सुमित जल्दी से आगे बढ़ा और उसकी ओर घूरते हुए बोला, ये सब तुम क्या कर रही हो और तुम ये कपड़े पैक करके कहाँ जा रही हो? तब राधिका लड़खड़ाती हुई बोली, आपने देखा, अरमान भैया डेविल किंग है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर राधिका ने उल्टे सीधे कपड़े बैग में भरकर जिप बंद की और फटाफट से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त सुमित ने गुस्से से उसके हाथ को कसकर पकड़ा, अपनी ओर खींचा और नाखुश होकर बोला, जस्ट शट अप। तुम यहाँ से बाहर कदम निकालने के बारे में सोचना भी मत। आखिरकार जानती क्या हो तुम डेविल किंग के बारे में? जवाब दो मुझे। एक और बात, वो एक हीरो है, हीरो, और वो कोई विलेन नहीं है, समझी तुम?
अब राधिका अपनी आंखों में आंसू लाकर डरते हुए बोली, अच्छा इतने सारे लोगों की बहरहमी से जान लेने वाला हीरो कैसे हो सकता है? वो खूनी है, वो एक विलन है, विलन, और मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ बोर नहीं रह सकती हूँ। और मुझे तो लगता है कि आप भी उनके साथ रहते हैं, तो आपने भी जरूर कोई ना कोई खून खराबा किया होगा। जैसे ही राधिका ने जोश में सुमित को उसके मुंह पर खूनी बोला, अचानक सुमित की आंखें लाल हो गई और उसने अपना हाथ राधिका को मारने के लिए उठा लिया था। राधिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन सुमित ने उसे कुछ इंच दूरी पर ले जाकर अपने हाथ को राधिका को मारने से रोक दिया था और फिर गुस्से से उसने मुक्का दीवार पर मार दिया था। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो गया था। तब राधिका बेचैन हो गई और अपना डर भुलाकर फटाफट से सुमित के हाथ पकड़कर फूंक मारने लगी और रोते हुए उसके खून को साफ करने लगी। सुमित राधिका के चेहरे की घबराहट और उसके लिए दर्द साफ देख पा रहा था। अगले ही पल सुमित ने आगे बढ़कर अपने होठों से राधिका के कांपते होठों को शांत कर दिया था और उसे डीपली किस करने लगा। और ठीक 10 मिनट के बाद उसे अच्छी तरह से सैटिस्फाई किस करने के बाद वो उसे बाहों में भरते हुए बोला, सुमित ने अपने और अरमान के बारे में डबल किंग होने का सारा सच राधिका को बताना शुरू कर दिया था। अब तो राधिका के मन में जो अरमान के लिए डर पैदा हुआ था वो एक मिनट में ही छूमंतर हो गया था। और आगे बढ़कर उसने भी अब एक बार फिर से अपने होठों को सुमित के होठों का रख दिया और दोनों एक दूसरे को दिल खोलकर प्यार करने लगे। दूसरी ओर वही रश्मि, जिसे पहले ही डेविल किंग के बारे में पता था, उस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब वो सोच रही थी कि उसे किस तरह से अब आस्था के दिल से अरमान के लिए नफरत खत्म करनी होगी। इस वक्त वो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश ने उसे जाकर अपनी बाहों में समेटते हुए बोला,
मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है आस्था बहुत जल्द सारा सच जान जाएगी। और दादाजी ने जो 10 दिन दिए हैं सोच समझ कर ही दिए होंगे, और शायद आस्था एक बार फिर से अरमान को समझने लगेगी और उससे प्यार भी करने लगेगी। तभी रश्मि कुछ पल सोचते हुए बोली, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो आकाश, मैं जानती हूँ कि आस्था अरमान के डेविल किंग होने से ज्यादा नाराज है, लेकिन आस्था की नाराजगी कोई आम नाराजगी नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो अभी भी हमसे छुपा हुआ है। आकाश कहीं ना कहीं आस्था के बिहेवियर को याद करने लगा, क्योंकि वो बिहेवियर कुछ डेविल किंग की खबर के बाद से ज्यादा ही अलग हो गया था। वेल, जल्द ही आकाश ने रश्मि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, अब तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तब आकाश शातिराना अंदाज में बोला, मेरे पास एक प्लान है। तब उसने अपने शब्दों में रश्मि को कुछ समझाना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे रश्मि आकाश की बात सुन रही थी उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में रौनक को ठीक 20 मिनट बाद होश आया था, और जैसे ही उसे होश आया उसने अपने आप को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाया, और रौनक जल्दी से घबरा कर उठ बैठी और अपने आसपास इधर उधर अच्छी तरह से देखने लगी। तभी उसे अपने लेफ्ट साइड में एक चेयर पर बैठा हुआ आहन दिखाई दिया। आहन को देखकर रौनक उसे घूरते हुए अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और मुझे क्या हुआ था? कुछ पल सोचते हुए अचानक बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये बोलकर रौनक को याद आ गया था कि आहन ने उसे किस तरह से डीपली किस किया था, जिसे वो सहन नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई थी। तभी रौनक जिस बेड पर बैठी हुई थी उसने उसी बेड पर खड़े होकर उस बेड पर जितने भी पिलो, तकिया वगैरह, बेडशीट, चादर वगैरह रखी हुई थी वो सब आहन की तरफ फेंक कर मारना शुरू कर दिया था, और वो पूरे बेड पर इधर उधर उछल कूद करने लगी। अब आहन रौनक को इस तरह से उछल कूद करते हुए देखकर तुरंत बेड पर चढ़ गया था और उसे रोकने की कोशिश करते हुए घबराई आवाज में बोला, मेरी बंदरिया इतना मत उछलो, तुम्हारे लिए इस तरह से उछलना कूदना ठीक नहीं है, रुको, अरे रुको तो सही, रुको, ऐसा बोलकर आहन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रौनक तो उस वक्त आहन को पीट पीट कर उसका कीमा बना देना चाहती थी, इसीलिए वो फटाफट अपने हाथों को आहन की तरफ चला रही थी। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।